case 2 regarding case 2 regarding cost of acquisition. Case 2 regarding cost of acquisition. Suppose I purchase a property, dad purchase a property in the year, whatever, suppose 2003-04 mein unhone property kharida for 5 lakhs. Right? In the year 2010-12 or in the year 2016-17, he gifted that property to me. He gifted that property to me. Okay, in 2016-17 and in 2022-23 I sold the property. Okay, so sold the property kar diya, less index cost of acquisition, but I got the gift. So do I have the cost of acquisition for me? For me, there is no cost of acquisition. So then in that situation, what you will do? In that situation, when the person who is selling the property, he have got that property as a gift from his ancestor or father, mother, mother-in-law, father-in-law, whoever gifted him and he sold. So in that situation, the person who sold, ultimately sold the property, he don't have the cost of acquisition because he has not got that. In that situation, the previous owner price will be taken as cost of acquisition. So, property as gift. So, what you will take? Previous owner price is your cost of acquisition. Your cost of acquisition. ठीक है? अच्छा. प्रीवियस ओनर ने तो 2003-2004 में खरीदा था, उनका कॉस्ट था 5 लाख, तो दैट 5 लाख विल कम टू मी डिवाइड बाय. नाउ सर 5 लाख कॉस्ट तो मिल गया, लेकिन सर डिवाइड कौन से ईयर से करोगे? यस, डिवाइड कौन से ईयर से करोगे? सर इन दैट सिचुएशन विच ईयर से यू विल डिवाइड बाय द ईयर ऑफ परचेज ना. तो आपने कॉस्ट तो प्रीवियस ओनर का लिया, लेकिन ईयर ऑफ परचेज प्रीवियस ओनर का तो 2003-2004 है, वो नहीं लेना है. जिस साल में आपको गिफ्ट मिला, जिस आदमी ने उसको बेचा फाइनली, उसका परचेज ईयर कौन सा था? गिफ्ट ईयर. सो डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ गिफ्ट ईयर, इंडेक्स ऑफ गिफ्ट ईयर, वो डिवाइड करना इनटू इंडेक्स ऑफ सेल, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर. समझे आप? So, तुम्हारा फॉर्मूला वही है, इंडेक्स डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर. सो इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर विल बी विच ईयर विल बी द परचेज ईयर, द ईयर इन विच आई गॉट द गिफ्ट, दैट ईयर विल बी ट्रीटेड एज द इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर इनटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर. सर व्हाट इज द प्राइस विल बी टेकिंग इन द केस व्हेन यू गॉट द प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट, देन द प्रीवियस ओनर प्राइस विल बिकम द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर यू. That is the two case of cost of acquisition. One case of cost of acquisition when the property is purchased before 2001. So in that case, sir, what to do? You have to compare the original cost of acquisition and the fair market value. Dono mein se jo highest hai, wo le lo. That becomes the cost of acquisition. Theek hai? Achha, second case mein, and in that situation, divide by what? 2001-2002 ka index cost. That is 100. Okay. And second case mein, agar samjho previous owner ne गिफ्ट कर दिया किसी दूसरे, गिफ्ट बेचा नहीं, गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो कैपिटल गेन तो होगा नहीं क्योंकि गिफ्ट है ना, गिफ्ट देने पर ट्रांसफर हुआ नहीं. मैंने क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम कंसिडरेशन. कंसिडरेशन नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इनकम ही जनरेट नहीं हुआ ना, तो गिफ्ट आया तो मैंने उसके बाद मैंने बेचा, तो इन दिस सिचुएशन जिसने बेचा उसको कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन उसके लिए इंडेक्स कॉस्ट है नहीं, cost of acquisition hai nahi. So this situation says that when cost of acquisition you need a cost of acquisition in the gift property case, then the previous owner price is to be taken, but not the previous owner ka purchase year. Price you have to take from the previous owner, but purchase year jo calculation ke liye calculation karna index ka, uske liye purchase year the gift year, theek hai, lekin long term hai ki short term hai wo decide karne ke liye previous owner ka purchase year, वहां से काउंट करना है ईयर 36 मंथ. क्लियर? ओके. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. टू डिसाइड वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, डोंट टेक द गिफ्ट ईयर, टेक द ओरिजिनल परचेज ईयर. परचेज ईयर इज 2002-2003, वहां से लेके अभी तक, तो 36 मंथ से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म. अच्छा, एक्विजिशन कॉस्ट फॉर द गिफ्टेड पर्सन, फॉर द पर्सन हु गॉट द गिफ्ट, द प्रीवियस ओनर प्राइस. अच्छा, पर इंडेक्स इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, द गिफ्ट ईयर. ठीक है, सो दैट गिव्स यू द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. नाउ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सो सेकेंड कैलकुलेशन इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सॉरी फॉर माई राइटिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर. इंडेक्स ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, इंप्रूवमेंट ईयर इंटू इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर. अच्छा, इंडेक्स ऑफ सेल ईयर. नाउ ईयर यू हैव टू नोट अ पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट एनी एक्सपेंस ऑन इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1st April 2001, एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1st April 2001 दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन कैपिटल गेन कैलकुलेशन, इज नॉट कंसिडर्ड इन कैपिटल गेन कैलकुलेशन, इन कैपिटल गेन कैलकुलेशन दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन कैपिटल गेन कैलकुलेशन. अंडरस्टूड, क्लियर? सो आई हैव एक्सप्लेन यू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाउ टू कैलकुलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वॉट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड वॉट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू नो दैट, देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, द परफॉर्मेंस सेलिंग सेल्स कंसिडरेशन माइनस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर फीस, दैट विल गिव यू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अच्छा, एंड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेल्स कंसिडरेशन माइनस convert your index cost of equation acquisition, convert your cost of improvement. So convert करने के बाद उसको बोला जाता है index cost of improvement, index cost of acquisition. How to convert? I have given you the formula. The formula is the same. खाली क्या है, cost of acquisition लिखो या cost of improvement, जो चाहिए वो ऊपर लिखो, divide by उस साल purchase किया तो purchase year का index, improvement किया तो improvement year का index. अच्छा, improvement का expense अगर आपने 1st April 2001 के पहले कोई year में किया improvement, उसका benefit नहीं मिलेगा, that is not supposed to be considered in the capital gain calculation. ओके, नाउ इन दिस में, अच्छा अभी आपका सपोज करो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा था 70s इन द ईयर 1970 और उसको आपने 2022 एंड 23 में बेच दिया. ठीक है, अच्छा वो इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके सपोज द इनकम द नेट कैपिटल गेन इज 60 क्रोर्स, यू आर गेटिंग 60 क्रोर्स आफ्टर सेल एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इंडेक्स कॉस्ट, यू आर गेटिंग द नेट कैपिटल गेन 60 क्रोर्स ऑन विच यू हैव टू पे 20, प्रॉपर्टी की बात करो 20%. Now, if from that capital gain, suppose आपने प्रॉपर्टी खरीदा था जूना, उसको बेच दिया और उसको बेच के वो पैसे से आपने दूसरा प्रॉपर्टी, अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट जो आपने अर्न किया, कैपिटल गेन अमाउंट, सेल अमाउंट नहीं, आपने बेचा भले 100 करोड़ में, ठीक है, उसमें से डिडक्ट करके आपको 40 crores, सपोज 40 crores इज अ कैपिटल गेन, अगर ये 40 crores विदिन वन ईयर, विदिन द 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, 12 months from the date of sale, if you invest that amount, that capital gain amount in some another property, or you have purchased the rural development infrastructure bond, or rural development bond, or rural electricity bond, then that much amount of investment will be deducted from your capital gain, and on the remaining amount, you will be taxed at the rate of either 10% or 20%. Is that clear? What I said? Agar aapne capital gain, long term capital gain ki baat kar raha hu, 40 crores rupees aaya. Ab us 40 crores ko aapne kya kiya? Aapne naya property kharidne mein invest kar diya. To aapka wo zero ho gaya. Ya usme se 30 crores आपने नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो 10 करोड़ बचा, तो 30 करोड़ जो इन्वेस्ट कर दिया ना उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, 10 करोड़ पे टैक्स लगेगा। सिंस इट इज अ लॉन्ग टर्म यू हैव टू पे 20% टैक्स, इफ अगर शॉर्ट टर्म होता तो 10% टैक्स होता। अगर आपने नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या आपने लॉन्ग टर्म का जो भी कैपिटल गेन आया उसको आपने रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया या रूरल इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में इंफ्रा स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे सब 2-3 स्कीम है गवर्नमेंट के, ठीक है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपका कैपिटल गेन, देन यू विल नॉट बी टैक्स्ड, यू विल नॉट बी टैक्स्ड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इसमें एक और एक पॉइंट है। देखो जैसे मैंने आपको पहले बोला इस चैप्टर में एक बोला कि एनी इनकम अराइज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम कंसिडरेशन, देन इट इज कैपिटल गेन। तो जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि खाली सेल्स ही ट्रांसफर को बोलते हैं, ट्रांसफर के बहुत सारे अलग डेफिनेशन भी है। सो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सो ट्रांसफर तुम्हारे दिमाग में अभी जो इतना आपने मेरे से मेरा लेक्चर जो सुना, इतना लेक्चर में आपको ऐसा दिमाग में आया है कि सेल होगा प्रॉपर्टी एसेट, कैपिटल एसेट बिकेगा तो ही वो ट्रांसफर है। नहीं, देर आर डिफरेंट केस ऑफ ट्रांसफर, जहां पर सेल नहीं हो रहा है लेकिन उसको ट्रांसफर मान के आपको उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है और उसका टैक्स भरना है। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल वेयर इट इज नॉट अ सेल बट इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो वो क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, नाउ व्हाट इज दिस, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। नाउ आपने सपोज करो आपने 300 करोड़ में एक मशीनरी खरीदा अपने कंपनी के लिए, बड़ा मशीनरी खरीदा अपने कंपनी के लिए, ठीक है, ओके, सो और जब आपने 300 करोड़, अभी 300 करोड़ का अगर मशीनरी खरीदा है तो ऑब्वियसली उसका इंश्योरेंस लोगे, तो आपने उसका इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया एंड यू पेड 50 करोड़ फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर 300 करोड़ का मशीनरी, ठीक है, तो 50 करोड़ इज द पॉलिसी वैल्यू। तो अब क्या हो गया, 3-4 साल हो गया मशीनरी का, 3-4 साल हो गया, और 3-4 या 5वें साल में ना मशीन में आग लग गया, ब्रेकडाउन हो गया मशीन और उसमें आग लग गया या ब्लास्ट हो गया या कुछ तो हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट होगा या कुछ प्रॉब्लम हो गया रहेगा या चूहे ने वायर काट दिया उसके लिए शॉर्ट सर्किट हो गया तो ब्लास्ट हो गया, कुछ भी कोई नहीं रीजन, ठीक है, ब्लास्ट हो गया पूरा मशीन जल गया पूरा, तो आपको लॉस, अच्छा लेकिन अब मशीन जल गया लेकिन तुम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है तो आपको क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाला आएगा, उसका जो सर्वेयर है सर्वेयर आएगा, देखेगा कि उसका जानबूझकर किया है क्या या शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या, वो रीजन फाइंड आउट करेगा, अगर जानबूझकर किया होगा तो आपका क्लेम पास नहीं करेगा, लेकिन अगर जानबूझकर नहीं है, सच में वो शॉर्ट सर्किट हुआ है या सम इंटरनल टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ द मशीन उसके वजह से हुआ है तो फिर वो आपको क्लेम देगा। तो वहां पर आपको आपके मशीन तो गया आपने बेचा क्या नहीं, लेकिन उसके बदले आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रहा है। सो देयर इन द केस ऑफ लॉस ऑफ एसेट, इन केस ऑफ लॉस ऑफ एसेट, इस केस में व्हाट इज योर सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन विल बी द इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट। तो सेल्स कंसिडरेशन विल बी इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, बाकी आपको सबको ऐसे ही करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट जो भी किया वो ऐड करके उसमें से माइनस करना है, ऑब्वियसली लॉस ही आएगा, प्रॉफिट तो आएगा नहीं, तो लॉस, समझ में आया, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मालूम है, अब मुझे ना कंपनी, किसी कंपनी में ना मुझे ये बनना है, क्या बोलना है, पार्टनर बनना है, अभी कंपनी में किसी भी कंपनी में पार्टनर बनना है, यू हैव टू इन्वेस्ट सम कैपिटल, यस और नो, हाँ या नहीं, अरे हाँ या ना तो बोलो यार, यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द इंस्टेंट रिप्लाई। तुम लोग ऐसे बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, वहां से बोलो बैठे बैठे मुझे पता चल जाता है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है अपना। हाँ थैंक यू रवि, थैंक यू विशाखा, थैंक यू जिनल, थैंक यू वेरी मच। ओके सो क्या है ना कि आपने आपको किसी कंपनी में पार्टनर बनना है, सपोज मुकेश अंबानी के साथ पार्टनरशिप करना है या उसके साथ पार्टनर में आना है, ठीक है, या किसी और कंपनी के ओनर के साथ पार्टनरशिप, जो अभी आया ना फेसबुक का, क्या उसका नाम, मेरे को उसका नाम आता नहीं, जोगसबर्ग ऐसा कुछ तो नाम है, मेरे को नाम प्रोनाउंस करने नहीं होता है, ठीक है ना, जो भी है बग्स जो भी आया है वो है ना गोरा, जेठालाल का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं आज, है ना, अंबानी के बेटे की शादी में, तो उसके साथ पार्टनरशिप करना है, ठीक है। तो उसके साथ पार्टनरशिप करने में क्या किया मालूम है, वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनना चाहता हूं, बनो, लेकिन आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो तुम बोलो यार पैसा तो नहीं है, बोला ऐसा कैसे, कौन सा पार्टनर है भाई जो खाली बिना पैसे का एडमिट पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, बिना पैसे लगा के वो कैपिटल पार्टनर बन जाएगा, कुछ तो डालना पड़ेगा। बोलते यार मैंने बोला पैसा नहीं है, मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मैं देगा नहीं। तो तुमने क्या बोला माना, मेरे पास एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर है, हाँ तो वो मैं तुमको दूंगा। बोला मेरे, तुम मेरे को कंप्यूटर क्या देगा, मेरे तो मेरे कंपनी में तो बहुत सारे कंप्यूटर है, तो तुम मेरे को कंप्यूटर दे के मैं तुमको पार्टनरशिप में क्यों लूं। अरे तुम फिर उसको बोलोगे अरे भाई फेसबुक के, भाई फेसबुक के ओनर जरा सुन तो सही, पूरी बात तो सुन, मैं तुमको कंप्यूटर दे रहा हूं, वो एक ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है। तो क्या है वो, इज आस्किंग वॉट काइंड ऑफ कंप्यूटर, आई हैव बेटर कंप्यूटर देन यू, वो बोलते हैं मिस्टर फेसबुक ओनर। तो तुम बोले अरे भाई सुन तो सही मेरी बात, तू यार सुनता ही नहीं, हमेशा घोड़े पे रहता है, सुन क्या, ओके सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि क्या है वो कंप्यूटर में। बोला सर आई हैव अ कंप्यूटर इन विच यू, इफ यू प्रेस द की द साउंड विल प्रोड्यूस, साउंड गेट प्रोड्यूस, व्हाट, डोंग 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 डोंग, नाउ अंडरस्टूड, डोंग 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 डोंग, सुना है ये म्यूजिक, सुना है आपने। बोला हाँ ये सुना है, ये म्यूजिक बजते ही स्पेस में से जादू आएगा, कौन आएगा, जादू, अगर जादू आ गया तो फिर तो हमारा कंप्यूटर, तो वो तो हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर है, ही इज तो जीनियस है ना, उसका पावर अगर आप यूज करोगे तो यू बिकम सुपर पावर, सुपर हीरो, यस और नो। अच्छा तो मिस्टर फेसबुक का ओनर क्या बोलेगा, अरे हाँ यू हैव दैट कंप्यूटर, बोला हाँ दैट कंप्यूटर इज विथ मी, यू वॉन्ट, आई विल गिव दैट एज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैंने क्या किया, मेरा वो कंप्यूटर जिससे आप प्रेस करोगे बटन, कीबोर्ड दबाओगे, डोंग 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 डोंग, ये म्यूजिक क्रिएट होता है, और ये म्यूजिक इज अ सैटेलाइट मैसेज विच सेंड टू जादू, एंड जादू विल कम, हु इज जादू, यू नो वेरी वेल राइट, दैट ही विल कम एंड ही विल सॉल्व यूर ऑल द प्रॉब्लम, ही इज अ सुपर पावर पर्सन, एलियन, एलियंस आर सुपर पावर राइट, दे आर मोर पावरफुल देन ह्यूमन बींग, और उससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आर्या, उसको वर्ल्ड का फ्यूचर देखना था, वो जादू ही कर सकता था, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, मिस्टर फेसबुक ओनर ने बोला ओके रेडी, तो मैंने क्या किया, वो कंप्यूटर उसको दे दिया। तो वो जैसे कंप्यूटर पे लिया, अच्छा उसका मेरा बुक वैल्यू है सपोज 1 करोड़, उस कंप्यूटर का मार्केट वैल्यू है 500 करोड़, मैंने बनाया था उसको 1 करोड़ में, मार्केट वैल्यू कितने का है 500 करोड़, लेकिन मिस्टर फेसबुक ओनर ने तुम्हारे नाम पे उसके बुक में लिखा 700 करोड़, ठीक है, सो दैट विल बिकम द सेल्स कंसिडरेशन। तो तुमने उसको दे दिया, ट्रांसफर हुआ, लेकिन पैसा मिला क्या, नहीं मिला पैसा, कैश में नहीं मिला, बट दैट कंसिडरेशन यू गॉट ना, यू बिकेम द पार्टनर इन मिस्टर फेसबुक ओनर्स कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ 700 इन द रिटर्न इन द बुक्स, समझ गया। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, जस्ट वेट आई विल राइट, हाँ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट, तो इसमें सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा, सेल थोड़ी किया मैंने, लेकिन इसमें सेल्स कंसिडरेशन मिला ना तुम्हारे उसके कंपनी में, तुम्हारे नाम से कैपिटल कितना, तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड, द वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी नॉट बुक वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इन बुक्स इज योर सेल्स कंसिडरेशन, समझ गया। तो यहां पर सेल हुआ क्या, ट्रांसफर हुआ, सेल नहीं हुआ, तो दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू सेल्स इज अ स्मॉलर टर्म, ट्रांसफर इज अ बिगर टर्म, तो ट्रांसफर कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो यहां पर आपका एसेट उसके पास गया, आपको उसके बदले में कंसिडरेशन कैश में तो नहीं मिला, लेकिन आपके नाम पे 700 करोड़ कैपिटल रिकॉर्ड हो गया, तो उसके बुक में वो एसेट्स का क्या वैल्यू रिकॉर्ड हुआ, दैट इज योर सेल्स कंसिडरेशन, समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी तीसरे की बात करते हैं, तीसरा एक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा, द थर्ड पॉइंट, थर्ड वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, थर्ड केस ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, जहां पर सेल्स नहीं हो रहा है लेकिन ट्रांसफर हो रहा है. नाउ समझो, आपने सुना होगा विजय माल्या, हैव यू हर्ड अबाउट विजय माल्या, हैव यू हर्ड अबाउट विजय माल्या, है ना, ओनर ऑफ किंग फिशर एयरलाइंस, नाउ द एयरलाइंस गॉन डाउन, राइट. अच्छा किंग फिशर बियर, ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ, अच्छा ही हैज अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग एंटीक पीसेस इन हिज हाउस. So in when he was, you know, in a very powerful position financially, at that time he got the sword of Tipu Sultan, sword of Tipu Sultan from UK. UK ka museum se usne kuch million dollars kharid ke pay karke wo sword of Tipu Sultan lekar aaya. As per Vastu, that sword is a object of destruction. It is a sign of destruction. तो वो जिसके पास भी गया वो बर्बाद होगा, ऐसा उसका वास्तु का हिसाब से उसका प्रेडिक्शन है. और उसने क्या किया, उसके पहले तो ही वॉज अर्निंग वेरी गुड, ही वॉज अर्निंग अ वेरी गुड पोजिशन. एज सुन एज ही गॉट दैट सॉर्ड इन हिज हाउस, उसने अपने म्यूजियम में रखा, अपने घर के म्यूजियम में, ही स्टार्टेड डिग्रेडिंग. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, फॉरगेट अबाउट दैट. अच्छा, अब वो सॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान अब उसके पास है, ऐसे बहुत सारे उसके बाद छोटे छोटे हीरे जो यूके से उसने म्यूजियम से खरीदे थे, विच इज एंटीक, जो अभी किधर भी नहीं मिलेंगे, ऐसे उसके पास वो शौकिया तौर पे वो खरीद के अपने घर पे कलेक्ट करता था. जैसे किसी किसी को स्टैम्प्स कलेक्शन का शौक है, किसी किसी को कॉइन्स कलेक्शन का शौक है, किसी किसी को अलग अलग कंट्री का करेंसी नोट को कलेक्ट करने का शौक है, एंड दैट बिकम एंटीक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, येस और नो? ठीक है, अब विजय माल्या का डाउनफॉल आ गया, ठीक है, उसका बिजनेस ठप होने लगा. अब वो क्या बोलता है, यार अभी मेरे को कोई बिजनेस के लिए लोन देगा नहीं, बिजनेस के लिए कोई मुझे लोन देगा नहीं. सो इन दैट सिचुएशन क्या करने का, इन दैट सिचुएशन क्या करने का, तो क्या करने का, तो उसने उसके जो एडवाइजर्स है उन्होंने बोला, सर नाउ व्हाई कांट वी स्टार्ट डीलिंग इन दिस एंटीक्स. उसने बोला, अरे ये तो बहुत सही है, बिकॉज जैसे हम लोग ने खरीदा है, ऐसा कोई भी शौकीन आदमी रहेगा ना, शौकिया आदमी जो एंटीक कलेक्ट करता हो, ऐसे आदमी को हम लोग बेचेंगे. तो ही स्टार्टेड द डीलिंग बिजनेस ऑफ सेलिंग द एंटीक्स टू द पीपल थ्रू अमेजोन, थ्रू फ्लिपकार्ट, थ्रू स्नैपडील, और उसने एक दुकान खोल दिया. तो क्या किया मालूम है, उसने अपना घर का कैपिटल एसेट उठाया. टिल दैट टाइम इट वाज अ कैपिटल एसेट, राइट. देखो, द आइटम इन विच यू डील इज गुड्स, इट इज नॉट कैपिटल एसेट, इट इज करंट एसेट. और जो आप खरीदते बेचते हो, खरीदते बेचते हो, खरीदते बेचते हो ना, उसको गुड्स बोला जाता है, करंट एसेट बोला जाता है, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट. तो आपने क्या किया, आपके घर पे जो अलग अलग एंटिक्स थे ना, उसको एक दुकान खोला, उसका पूजा किया और इनॉग्रेशन पूजा किया, और वहां पर वो सब सामान रख दिया बेचने के लिए. दैट मीन्स देर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम विजय माल्या टू हिज न्यू वेंचर एज पर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, है ना, बिजनेस इज अ डिफरेंट एंटिटी. तो आपने अपना गुड्स उनको दे दिया, उसके इसका मतलब ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ कि नहीं? अच्छा ट्रांसफर हुआ, सर हमने बेचा थोड़ी. अरे मैंने क्या बोला बेचा, लेकिन अगर अगर आपने बेचा नहीं तो फिर इसका जो नया बिजनेस हमने एंटीक का, उसमें हम लोग परचेज प्राइस नहीं दिखा सकते. अगर आपने बेचा नहीं ऐसा बोलेंगे तो यू कैनॉट शो द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट इन द बिजनेस, न्यू बिजनेस. सो अगर आपको परचेज प्राइस दिखाना है तो यहां पर आपने यू हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी ऐसा दिखाना पड़ेगा. सो इन दिस केस व्हाट विल बी योर सेल्स कंसिडरेशन in case of conversion of, this is called conversion of capital asset into stock. In this case sales consideration kya hoga, in this case sales consideration will be the fair market value of asset on the day of conversion. On the day of conversion, the fair market value on the day of conversion. तो जिस दिन उसने अपने घर से गुड्स को उठा के इसमें अपने न्यू कंपनी के शोरूम में रखा, तो उस दिन उस स्टॉक, उस कैपिटल एसेट का मार्केट में क्या वैल्यू है, हमने खरीदा था कितने में भी, मार्केट क्या क्या वैल्यू, वो मार्केट का वैल्यू माइनस द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज जो आएगा, दैट विल बी कैपिटल गेन. उसका अगर आप कैपिटल गेन भरोगे तो ही ये जो सेल्स कंसिडरेशन प्राइस विल बी बिकम द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस, अदरवाइज नहीं मेरी बात, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल्स कंसिडरेशन कैसे आएगा? सर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट, दिस इज द केस ऑफ बेचा क्या? नहीं, अच्छा इसके बाद वो जब स्टॉक बिकेगा तो वो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा, दैट इज नॉट कैपिटल एसेट। एक बार उसको स्टॉक में कन्वर्ट करके फिर बेचोगे तो इट इज नॉट कैपिटल एसेट, इट इज अ स्टॉक, वो बिजनेस हो गया आपका, आप उसमें डील कर रहे हो, एंटीक पीसेस में डील कर रहे हो, समझे कि नहीं? तो उसमें परचेज दिखाने के लिए आपको इधर कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन नहीं दिखाया, नहीं भरा तो उसमें परचेज नहीं दिखा सकते, और परचेज नहीं दिखाया और सेल किया तो तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है, भाई आया कहां से? अंडरस्टूड? तो यू हैव टू शो परचेज का प्राइस, फॉर दैट यू हैव टू पे द कैपिटल गेन। ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। ओके, द फोर्थ केस ऑफ सेल्स कंसिडरेशन वेयर देर इज नो सेल, फोर्थ केस ऑफ सेल्स कंसिडरेशन फिगर वेर देर इज नो सेल बट देर इज अ ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी पार्टनरशिप फर्म गॉट डिसॉल्व, सो डिसॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म dissolution of firm and assets distributed. A partnership firm got dissolved. Now partnership firm got dissolved, so what is the procedure? That the company, the entity and the partners are two different people. So in the partnership firm when the company dissolved, it is a process that the company, the part firm, will sell off all the assets and pay off from that money, whatever cash comes, they will pay off all the liabilities, and at the end they have to pay to the partners, because partners are the ultimate bearer of the loss, right? So now what happened? The company is dissolved and company has paid all the liabilities which is to the outsider. They have paid all the amount due which is to the outsider. Now they have three assets. One property at one particular area, a factory premises, and a land. Property means they have a different machinery. One machinery they have, which has a huge cost in the market, and they have one land and they have one factory premises. And there are three partners, right? So three partners said, sir, now what to do? The company is saying that I have only these three properties. Now this three property I'll distribute to you. You tell me which property you want, whoever want, whichever property that get transferred to you people. So in this situation, there is a transfer of asset to the partners in consideration for the payment dues, the amount which is due as capital with the company. So company is paying, clearing the dues by paying them through various asset. So here actually there is no sale, but the company is saying that I don't have money to pay you all, but instead of money, I have these three assets. Whichever, if you want this asset, I'll give it to you. If you want that asset, I'll give it to you. And the third asset will be to you. So according to the choice of the partner, they told, okay, I want factory premises. So one partner took factory premises. Another partner took land. And third partner took all the machinery which is pending. So in this case, the company, the firm has to file the capital gain. So for in this situation, the sales consideration of the asset will be the fair market value of the asset at the time of distribution. Understood? Okay, fine. So in this, the company, the entity, the firm, partnership entity, right? And the partners are two different people. The company will file a returns claiming a capital gain. For claiming a capital gain, the sales consideration will be the price and the day of transfer. What is the fair market value of that property? They will write that less the cost of acquisition, whatever amount they are getting, that will be the capital gain. They might suffer a loss or get a profit, depends. And if they get a profit, they have to pay tax. The tax burden will be on the partners. And if they have suffered loss, so they don't have to pay tax. Understood? So this is the fourth example of sales consideration where there is no sale actually, but there is a transfer. And the last one is compulsory. Last situation is compulsory acquisition compensation. Compulsory acquisition compensation. Now, what is this compulsory acquisition compensation? Now, see, everywhere in Mumbai, if you see, if you come to Mumbai, if you are a Mumbai person, you know very well. But if you are not from Mumbai, if you are coming from outside state, maybe apart from Maharashtra, coming from Bangalore, Karnataka, or UP, Bihar, wherever from. So, if you come to India, you will see that there are lots of construction work going on. Of the metro. So in the process of construction of metro, before doing the construction of metro, they decided to widen the road because the roads were very narrow. Okay, so they decided to widen the road. So in the process of widening the road, what is happening, the people who's having their shop or house, it got cleared off. That the government took a harsh decision. They said ki we are going to demolish all these properties. So for that, you take the compensation from the government and move from here. Take the compensation from the government and move from here. Understood? Take the compensation and move from here. So people have no choice. Rather than not listening to the government and sitting there on a dharna pradarshan. Shouting for the rights, no, we don't want aisa kyu. Because why happened, when it is a case of development, in the case of development, everything government can take action and they demolish that. And they are not demolishing for free, they demolish it by paying some amount compensation. That compensation may be more or that compensation will be less as from the expectation of the people. So if it is less, they can put case on the government and they can fight. But at this moment of time, you take the compensation. So here, there is compulsory acquisition. So I'm not willing to sell my property, but still I have no choice left rather than surrendering my rights to the government and taking money from them. So in this case, what will be the sales consideration when there is a compulsory acquisition? Compulsory sales consideration will be the compensation paid by the local authority or government. Okay, acha, you are expecting 5 crores, but government gave you 4 crores. You take the 4 crores and you can put case on that. And in the case, if the government, the judgment came in your favor, the government has to pay more. At that time, that is an additional. That will be the additional income. Again, that at that time also you have to file income tax return showing a sales consideration this much less, cost of acquisition nil. Because that time cost of acquisition will be nil because you have claimed at this time, at the beginning compensation, when you the compensation received for the first time, at that time you have deducted the cost of acquisition. So again, for the second compensation, you will not be able to, you are not allowed to deduct the cost of acquisition because aapne, that has been claimed by you in the first compensation which you received. This is the second part of the compensation. Okay, so this is the compulsory acquisition. So that's all from this chapter. This chapter consists of, these are the important points, which area which I felt that to cover to you. After that, you can go through the PPTs or the textbook and you can see it will be very effectively, you will be able to understand very effectively after going through this video. Okay, so hope you understood this topic, this concept. So now we are moving on to the next chapter, that is chapter number 8, income from other sources. Till that time, you can have a break. Thank you very much.